सुर्खियों में
नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुर्खियों में और आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध मिश्र। आज हम चर्चा करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल के मुख्य निर्णयों पर जिन्हें हाल ही में कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई और जिनका प्रभाव देश के बुनियादी ढांचे, शहरी विकास तथा स्टार्टअप इकोसिस्टम पर पड़ने वाला है। आज बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं आर्थिक विश्लेषक दीपशिखा सिकरवार, जिनसे हम इन फैसलों के विभिन्न पहलुओं और उनके संभावित प्रभावों को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। दीपशिखा जी, स्वागत है।
धन्यवाद सुबोध जी।
शुरुआत करते हैं उस महत्वपूर्ण बदलाव से जिसके तहत साउथ ब्लॉक से सरकार के कुछ कार्यालयों का स्थानांतरण सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवनों में किया जा रहा है। आइए सुनते हैं कि इस बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा।
आज देश विकसित भविष्य के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, इसके लिए एक आधुनिक, तकनीकी और पर्यावरण के प्रति अनुकूल कार्यालय की आवश्यकता थी। एक ऐसा कार्य क्षेत्र जो यहाँ काम करने वाले हर कर्मयोगी की उत्पादकता को बढ़ाए, सेवा भाव के उसके संकल्प को प्रोत्साहित करे। इसी भाव के साथ साउथ ब्लॉक के उद्घाटन के करीब 95 वर्षों के बाद 13 फरवरी 2026 को भारत सरकार इन भवनों को खाली कर रही है और सेवा तीर्थ तथा कर्तव्य भवनों में स्थानांतरित हो रही है। यह प्रतीकात्मक रूप से गुलामी के अतीत से विकसित भारत के भविष्य की ओर बढ़ने की ओर देश का एक और कदम है।
दीपशिखा जी, साउथ ब्लॉक से सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन में स्थानांतरण आपकी दृष्टि में प्रशासन और बदलाव के प्रतीक दोनों के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है?
सुबोध जी, एक तो ये बहुत ही सिंबॉलिक है और जैसा कि हमने सुना अश्विनी जी को भी, पुराना जो काल था अब हम देखिए कि नई संसद भवन में शिफ्ट किए हैं। उसके अलावा भी विभिन्न मंत्रालय जो हैं कर्तव्य भवन में पहले उनको शिफ्ट किया जा चुका है, लेकिन सिंबॉलिज्म अपनी जगह पर है। उसके साथ साथ जो एक अहम बात है वो है फंक्शनैलिटी की। ये जो बिल्डिंग्स थे ये बहुत पुराने बने हुए थे, सरकार की कैपेसिटी, सरकार की जरूरतों में काफी परिवर्तन आ गया है। दुनिया भर की टेक्नोलॉजी की आजकल इंटरफेस जो है सरकारी कार्य में उसकी जरूरत पड़ती है, तो जो ये पुरानी बिल्डिंग्स हैं खासतौर से आज के दौर में थोड़ा सा उसमें दिक्कत होने लगी थी। तो ये जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, इनमें नई तरह की सुविधाएं हैं, ज्यादा जगह है और आज की जरूरतों को देखकर इन बिल्डिंग्स को बनाया गया है। तो फंक्शनैलिटी के नजरिए से ये बिल्डिंग्स जो हैं जरूरतों को पूरा करेंगी। टेक्नोलॉजी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, प्रधानमंत्री अगर विभिन्न राज्यों के साथ करना चाहते हैं उसकी बेहतरीन फैसिलिटी है, बाकी अफसरों के लिए भी बैठने में भी जगह की बहुत जो आवश्यकता पड़ने लगी थी बहुत सारी ये पुरानी बिल्डिंग्स के हिसाब से वो जगह काफी है। नए स्तर के जो है वो टूल्स और इक्विपमेंट के साथ ये बिल्डिंग्स बनी है। तो दोनों सिंबोलिज्म के साथ साथ फंक्शनैलिटी दोनों चीजों के लिए ये जो मूव है इसको मैं इसी दृष्टि से देखती हूँ। पूरा जो एक सेंट्रल विस्ता का डेवलपमेंट चल रहा है ये जो शिफ्ट किया गया ये उसी के तहत हुआ है।
दीपशिखा जी, पिछले दिनों जो कैबिनेट के निर्णय हैं उन पर आते हैं, उनको आप देश के दीर्घकालिक विकास रणनीति के संदर्भ में किस प्रकार देखती हैं?
तकरीबन 1.5 लाख करोड़ के योजनाओं और प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई थी कैबिनेट द्वारा और ये अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों के लिए है, रेलवे के लिए है, रोड्स के लिए है, एक अर्बन चैलेंज फंड भी अप्रूव किया कैबिनेट ने, स्टार्टअप के लिए भी नया एक फंड आया है। तो अगर आप देखें कि ये सरकार का जो फोकस चल रहा है काफी समय से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत पुश करने का, तो सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए जो ये फंड्स हैं ये अलॉट किए जा रहे हैं, तो ओवरऑल आपके जो ग्रोथ है उसको बहुत सपोर्ट करेंगे। अगर आपको याद होगा कि दो प्रिंसिपल्स जो हैं प्रधानमंत्री ने जब 2047 विकसित भारत के लिए लक्ष्य तय किया था तो उसमें दो बातें बहुत अहम कही थी, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, उद्योग जगत के लिए व्यवसाय जगत के लिए आधारभूत सुविधाएं बहुत जरूरी हैं, बहुत अहम है, जो विकास हम देश का चाहते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ नागरिक जो हैं इस देश के उनके लिए भी ईज ऑफ लिविंग की बहुत जरूरत है, उनको भी आधारभूत सुविधाओं की जरूरत है। तो सड़कों की कैसे कैपेसिटी एक्सपैंड की जाए, रेलवे की किस तरह से एक्सपैंड की जाए, हमारे यहाँ शहरीकरण काफी तेजी से हुआ है। अगर आप देखें जनसंख्या का जो दबाव है वो बड़े बड़े शहरों पे खास तौर पर होता है, तो ये महसूस किया गया कि अर्बनाइजेशन जो है उसको किस तरह से आप सपोर्ट करेंगे ताकि आपके शहरों का विकास हो सके सही तरीके से, उनका वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सही तरीके का तैयार किया जा सके। स्टार्टअप्स जो हैं बहुत बड़े जॉब क्रिएटर्स हैं आज के समय में, तो एंटरप्रेन्योरशिप को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सके, तो स्टार्टअप्स के लिए एक फंड आया है। तो ये देश में जिस तरह का ढांचा तैयार किया जा रहा है कि आपको ग्रोथ सपोर्ट करनी है, जो आज की जरूरत है, शहरीकरण, शहरीकरण काफी तेजी से हो रहा है, आपके शहरों को बहुत जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए, और देश का युवा जो पढ़कर आता है उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्टार्टअप का फंड जो है एक नया फंड है, पहले भी एक फंड था उसके अलावा ये एक नया फंड लाया गया है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर आगे देश की ग्रोथ को किस तरह से सपोर्ट किया जा सकता है, ये सारे जो निर्णय हैं उसी दिशा में एक कदम है।
आपने अभी शहरीकरण का भी उल्लेख किया, तो बात करते हैं अर्बन चैलेंज फंड की। इस पर भी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अर्बन चैलेंज फंड को स्वीकृति दी है। ये 1,00,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। इसमें बहुत इनोवेटिव एक मेथड लगाया जाएगा। इस 1,00,000 करोड़ के सरकार के इन्वेस्टमेंट से टोटल 4,00,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा अर्बन एरियाज के लिए। अर्बन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसमें एनकरेज किया जाएगा, टेक्नोलॉजी का बहुत यूज किया जाएगा, टेक्नोलॉजी के माध्यम से अर्बन चैलेंजेस को कैसे दूर करें वो बहुत इसमें ध्यान रखा जाएगा।
दीपशिखा जी, इस पर दो बातों पर आपकी राय चाहूंगा कि अर्बन चैलेंज फंड देश के शहरी विकास को किस प्रकार नई दिशा दे सकता है, और क्या इससे जो हमारे मध्यम आकार के और जो छोटे शहर हैं उनको भी समान रूप से लाभ मिलेगा बड़े शहरों की तरह ही।
भारत में जिस तरह से आबादी बढ़ी है, बड़े शहरों में तो हमने देखा ही है कि काफी हद तक दबाव बढ़ा है, जो उनका बुनियादी ढांचा है वो जिस जनसंख्या के हिसाब से तैयार किया गया था, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए वो कम ही पड़ रहा है, उस पर बहुत प्रेशर है। लेकिन बड़े मेट्रोस को अगर हम छोड़ भी दें, जो छोटे हमारे शहर थे वो अब साइज में बड़े हो गए हैं, उनके अलावा भी जो छोटे कस्बे थे वो भी एक बड़ा रूप ले रहे हैं, तो उनको भी ये सही बुनियादी ढांचा जो है इन सारे शहरों में रहे, आपका जल आपूर्ति है, सीवेज है, वहां सिटी का जो ट्रांसपोर्ट है मोबिलिटी के लिए, ये सारी चीजें हैं ये अर्बन चैलेंज फंड जो है एक तरह से सपोर्ट करेगा इनका डेवलपमेंट। अगर आप देखें कि हर शहर में जैसे जो म्युनिसिपैलिटी है या जो कॉरपोरेशन है उनके पास विकल्प नहीं होता, वो अभी तक ग्रांट्स पर ही निर्भर रहते थे, तो इस अर्बन चैलेंज फंड के तहत, और अगर आपको याद होगा बजट में भी म्युनिसिपल बॉन्ड्स की बात की गई थी, अर्बनाइजेशन की भी इकोनॉमिक सर्वे में भी बात की गई थी, ये जो फंड है जो म्युनिसिपैलिटीज होती हैं वो भी म्युनिसिपल बॉन्ड्स का जो ढांचा है उसके तहत बाजार से पैसा उठा सकती हैं। अर्बन चैलेंज फंड के तहत ये उनको मदद करेगा काफी हद तक, और उसके साथ साथ जो ये खर्चा किया जाएगा, ये जो फंड अगर म्युनिसिपैलिटीज बाजार से उठाती हैं तो उसकी मॉनिटरिंग होगी, जो योजनाएं उसके तहत आएंगी और उनकी मॉनिटरिंग होगी कि जो फंड्स हैं उनका किस हद तक, किस तरह से, कितनी एफिशिएंसी से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो फोकस यही है कि जो शहरीकरण है, शहरीकरण को सही तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए और जो छोटे छोटे भी जो शहर है वहां पर जो ढांचागत जो सुविधाएं हैं वो वहां के नागरिकों के लिए उपलब्ध रहें।
हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे थे, तो क्या स्टार्टअप्स के लिए जो नया फंड अभी घोषित हुआ है उससे भारत को स्टार्टअप का एक ग्लोबल हब बनाने की दिशा में मदद मिल सकती है?
स्टार्टअप इंडिया एक कार्यक्रम जो सरकार की तरफ से काफी समय पहले कार्यकाल में लॉन्च किया गया था और उसके तहत बहुत सारे स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनको रजिस्टर किया जाता है और उन्हें सुविधाएं मिलती हैं काफी सारी। और तभी एक स्टार्टअप फंड ऑफ फंड बनाया गया था कि वित्तीय सहायता जो है इन स्टार्टअप्स को दी जाए। अब उस फंड ऑफ फंड को काफी समय हो चुका है, अब ये एक नया 10,000 करोड़ का फंड जो है वो बनाया गया है, स्टार्टअप्स में निवेश करेंगे और उनको फंडिंग सपोर्ट देंगे। ये जो फंड है ये खासतौर से डीप टेक और हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग पर इसका फोकस रहेगा। अगर आप देखें कि पिछले कुछ समय से स्टार्टअप्स को जो वैश्विक स्तर पे जो फंडिंग आ रही थी देश में उसमें बीच में काफी गिरावट आ गई थी, स्टार्टअप्स को क्रेडिट जो है वो बहुत आसानी से नहीं मिल पाता है, नई छोटी छोटी नई कंपनियां होती हैं उनकी बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं होती है। तो ये फंड ऑफ फंड्स जो है ये इसमें मदद करता है क्योंकि इसके तहत जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो स्टार्टअप्स को इक्विटी सपोर्ट भी कर सकता है। तो जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए बहुत ही अहम होता है इक्विटी सपोर्ट अगर उनको कहीं से मिल जाए, और ऐसी स्थिति में जबकि वैश्विक स्तर पर जो फंडिंग आ रही थी वो उतने जोर शोर से नहीं आ रही है तो ये स्टार्टअप फंड जो है इसकी भूमिका ऐसे समय में बहुत अहम हो जाती है। स्टार्टअप सेक्टर को ये एक बहुत ही बल देगा ये फंड आकर के।
जीडीपी और रोजगार दोनों के हिसाब से देखें तो ये कदम काफी सकारात्मक प्रभाव डालने वाले हैं। दीपशिखा जी, कैबिनेट ने जो और मंजूरी दी है, अभी हम देखें तो रेलवे परियोजनाएं हैं, रीजनल कनेक्टिविटी है और व्यापार है, उनके लिए भी कुछ निर्णय लिए हैं, उन पर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे?
देखिए, अगर हम देखें सड़कों के निर्माण पर खासतौर से फोकस रहा है, रेलवे में भी लगातार प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल रही है, नेटवर्क को बढ़ाया जा रहा है, ट्रेन्स को बढ़ाया जा रहा है, उसके अलावा जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर था रेलवे का भी और रोड्स का भी, जैसे रेलवे में पुल का निर्माण है, बहुत सारे जगहों पर पुल निर्माण की वजह से काम रुका हुआ था। सरकार की तरफ से देखिए गति शक्ति एक इनिशिएटिव लाया गया था जिसके तहत ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग जगहों पे बन रहा है, जिस तरह से अलग अलग मंत्रालय जो आपस में बातचीत नहीं है, आपस में प्रोजेक्ट्स लिंक्ड नहीं है मंत्रालयों के, गति शक्ति प्लेटफॉर्म एक बनाया गया जिसमें आपस में सारे प्रोजेक्ट्स में सारे मंत्रालयों में उन प्रोजेक्ट्स की विजिबिलिटी रहती है, उनका जो प्रोग्रेस है, अप्रूवल्स उनके आ रहे हैं, मंजूरियां आ रही हैं, वो सब आप देख सकते हैं गति शक्ति में, और उसकी बराबर मीटिंग्स होती हैं हर साइज के प्रोजेक्ट्स की, प्रधानमंत्री तक गति शक्ति प्रोजेक्ट्स के जो मंजूरियां होती हैं उनको मॉनिटर करते हैं। उसकी वजह से बहुत अलाइनमेंट आ गया है इन सारी योजनाओं में और उसकी वजह से गति भी आ रही है। रेलवे और रोड्स बहुत ही इंटीग्रेटेड तरीके से इन सब का विकास किया जा रहा है। हाल ही की मंजूरियों को ना भी देखें, इसके पहले भी देखें तो इन सब में बहुत आपको इंटीग्रेशन दिखेगा जो मंजूरियां दी जा रही हैं। तो सड़क और रेलवे दोनों को लेकर के जब देश में हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर ग्रोथ को सपोर्ट करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करना जरूरी होता है। सरकार ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए काफी समय से कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बराबर फोकस किए हुए हैं, तो ये जो अप्रूवल्स हैं ये इसी दिशा में है।
श्रोताओं, जैसा कि अभी दीपशिखा जी ने विस्तार से बताया, कैबिनेट के ये निर्णय देश के समग्र विकास की दिशा में एक व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। दीपशिखा जी, अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद सबूत जी।
श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में।